This is an ABP Life podcast.
किसी को अन्न दान करने से या पैसे दान करने से या कपड़े दान करने से कोई भी चीज आप दान क्यों ना कर लें, लेकिन सबसे बड़ा महादान कहलाता है रक्तदान, ब्लड डोनेट करना। आज है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे और आपको ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि हर साल इंडिया को तकरीबन 5 करोड़ यूनिट्स ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट्स ही अवेलेबल होती है। और इस ब्लड की कमी के चलते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आप सुन रहे हैं FII। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी कमी है इंडिया के ब्लड बैंक्स में, ये पूरी कैसे हो सकती है, क्यों लोग ब्लड डोनेट करने से कतराते हैं, वो क्या मिथ है जो आज भी लोग मानते हैं और ब्लड डोनेट करने नहीं जाते, क्या ट्रांसजेंडर्स ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्या चल रही है इसको लेकर लड़ाई। आइए इन सब पहलुओं पर हम डिटेल में बात करें ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं।
मेरा नाम अनुभा तनेजा मुखर्जी है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में लॉयर हूँ और साथ ही साथ मैं खुद थैलेसीमिया की पेशेंट भी हूँ और साथ ही मैं थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप नाम की एक संस्था है जो थैलेसीमिक्स के हित में काम करती है, एनजीओ है, मैं उसकी अध्यक्षा भी हूँ।
थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए अनुभा। सबसे पहले जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी वो यही, हम अक्सर यही कहते हैं कि इंडिया में ब्लड की कमी है ब्लड बैंक्स में, इज दिस ट्रू, क्या ये सच है?
जी, ये 100% सच है। इनफैक्ट इत्तेफाक की बात है कि कल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और अभी हम कुछ एक महीने से ही दिल्ली में ब्लड की इतनी जबरदस्त किल्लत से जूझ रहे हैं और हम मतलब हमसे मेरा मतलब है थैलेसीमिया पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप और TPAG के माध्यम से हम दिल्ली के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ब्लड की किल्लत बिल्कुल है और ये बात ये आंकड़े आपको किसी भी WHO रिपोर्ट में भी मिल जाएंगे और एक साधारण सर्च से भी आपको ये आंकड़े मिलेंगे कि 140 करोड़ के देश में भी ब्लड की किल्लत।
जी, क्या इसका कोई पर्टिकुलर रीजन जो आप बताना चाहें, ऐसा क्यों है?
देखिए, कारण बहुत ही सिंपल है, वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। शायद लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, देयर आर टू मेनी मिथ्स। मेरी खुद की एक दोस्त हुआ करती थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी तो उनको ऐसा लगता था कि ब्लड डोनेट करने से फर्टिलिटी पे कोई असर होता है। किसी को ऐसा लगता है कि वेट गेन हो जाता है। बड़ी अलग अलग और अजीब अजीब तरीके की भ्रांतियां लोगों को हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चाहते नहीं है या कहीं हिंदुस्तानियों में कोई इस तरह की कमी है, देने की इच्छा नहीं रखते हैं। आप जानते हैं कि हमारी तो वैदिक संस्कृति है और हम तो दान में विश्वास करते ही हैं हिंदुस्तानी, लेकिन एक तो अवेयरनेस ही नहीं है कि कितनी बड़ी किल्लत है ब्लड। लोगों को ऐसा लगता है कि शायद जब एक्सीडेंट होता है या फिर कोई सर्जरी होती है तभी इसके काम आती है चीज, लेकिन लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि काफी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स की बात मैं ले लूं, तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो जिनके शरीर में अपना खून बनता नहीं है और जिनको 15-20 दिन में बाहर से खून चलवाना पड़ता है किसी और का लेके। इस तरह के केसेस होते हैं, डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं जिनको चाहिए हो सकता है बार बार खून, और भी कैंसर के पेशेंट्स हो सकते हैं। तो इस तरह की जागरूकता मैं मानती हूँ कि नहीं है लोगों में। कैंपेन्स, इतने बड़े बड़े कैंपेन्स नहीं हो पाते हैं, जैसे आप ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे, पोलियो बोलेंगे, तो इतने सरकारी स्तर पे इतने बड़े कैंपेन्स होते हैं कि लोगों में एक जागरूकता है, तो उस स्तर की को कोई जागरूकता क्रिएट नहीं की गई है, तो लोगों को शायद इतना पता नहीं है कि ब्लड डोनेट करना कितना आसान भी है और कितना जरूरी भी है. तो मैं जागरूकता की कमी को एक बहुत बड़ा कारण मानूंगी.
जी, क्योंकि आपने बात कही भ्रांतियों की, मिथ की, क्या आप बता सकते हैं कुछ और मिथ के बारे में जो लोगों के दिमाग में इस तरह के जाले बुने हैं वाइल डोनेटिंग ब्लड, और किन मिथ को आज आप तोड़ना चाहेंगे?
देखिए, ये तो सबसे पहले जो मैंने बता दिया कि फर्टिलिटी से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि इससे औरतों में फर्टिलिटी या आदमियों में फर्टिलिटी का कुछ लेना देना होता है. इसमें कुछ नहीं होता. एक और मिथ है कि आपको कमजोरी, आप दे देंगे तो आपको खुद कमजोरी आ जाएगी. ये भी एक मैं मानती हूँ बहुत बड़ी, और मैं क्या मानती हूँ, रिसर्च है इसके पीछे, डॉक्टर्स भी ऐसा ही कहते हैं कि ऐसी कोई कमजोरी नहीं आती. क्योंकि आप इस तरह से इसको लीजिए कि थैलेसीमिया पेशेंट्स, जैसे कहूँ तो वो ऐसे लोग हैं, ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें पेट्रोल ना डले तो वो गाड़ी नहीं चलेगी. पर आप ऐसी गाड़ी नहीं है. एक नॉर्मल पर्सन जो है ब्लड देता है तो उसके कुछ ही घंटों में आपका जो ब्लड है अपना दोबारा बन जाता है. आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो आपके शरीर में बनते रहते हैं. आपके शरीर एक मानिए फैक्ट्री है खून की, उसमें खून बनता रहता है. तो आप ये बहुत बड़ी भ्रांति को आज मैं बस्ट करना चाहती हूँ कि ब्लड देने से आपको किसी भी तरह की कमजोरी आती है.
जी.
फिर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कोई हार्ट पे इम्पैक्ट हो जाता है या मेरे किसी ऑर्गन में कमजोरी आ जाएगी या मैं वेट गेन या लूज कर लूंगा. ऐसा भी बिल्कुल नहीं है. ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है. इनफैक्ट काफी ऐसी, मानसी जी आप मानेंगी मेरी बात, की ऐसी रिसर्चेस हैं, बहुत सारी स्टडीज की गई हैं वैश्विक स्तर पे कि इससे फायदे भी होते हैं. डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में या हार्ट की हेल्थ के लिए नुकसान तो बड़े दूर की बात है, ब्लड डोनेशन मदद ही कर सकता है कहीं से. तो मैं ये दो तीन बड़ी भ्रांतियां जरूर बस करना चाहूंगी इस शो के जरिए.
एग्जैक्टली. अच्छा, अब ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें, चूंकि अब काफी जगह पर हम देखते हैं कि थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इवन एट वर्क प्लेसेस एंड ऑल, तो ट्रांसजेंडर्स क्या नहीं अलाउड है ब्लड डोनेट करने के लिए?
जी, आज अगर हम लॉ को देखें, लॉ से मेरा मतलब है गाइडलाइंस को अगर हम देखें, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है NBTC जिसको हम बोलते हैं, वो गाइडलाइंस बनाता है. और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है जो कानून है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज को भारत में रेगुलेट करता है. आज की डेट में उसके अनुसार ट्रांसजेंडर और जो सेक्सुअली एक्टिव लोग होते हैं जिसको वो LGBTQ+ कम्युनिटी बोलते हैं, उस कैटेगरी में आती है, वो नहीं कर सकते हैं. ये बात बिल्कुल सही है, उनपे बैन है.
क्या कोई पर्टिकुलर रीजन की किस लिए नहीं कर सकते?
जी, उनको एक हाई रिस्क कैटेगरी माना जाता है. क्योंकि जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी कैटेगरी आती है डोनर सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं. तो जब आप डोनर सिलेक्शन करते हैं तो वो कैटेगरी खाली ऐसा नहीं है कि ट्रांसजेंडर्स एक्सक्लूडेड है. और भी जैसे मान लीजिए आपने हाल फिलहाल में टैटू करा लिया हो, तो इस तरह की बड़ी सारी चीजें होती हैं जो डोनर सिलेक्शन में फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं कि आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप लेने वाले के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते हैं. LGBTQ+ की अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली अगर मैं ट्रांसजेंडर्स की बात करती हूँ, तो उनको हाई रिस्क कैटेगरी विश्व में बहुत सारे देशों में इसलिए माना जाते हैं क्योंकि ऐसी अजम्पशन रहती है कि वो सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ उनका रहता है. तो इसलिए उनको ब्लैंकेट बैन कर दिया गया है. लेकिन आपको ये जान के बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये फैक्ट कि एज वी स्पीक जो उच्चतम न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर है इस मामले में, जिसमें ट्रांसजेंडर्स ने अपना ये फंडामेंटल राइट बताया है कि हमारा फंडामेंटल राइट है स्वैच्छिक रक्तदान करना. और वो हमें करने दिया जाए। तो अभी ये सब जुडिस है, इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा बात करना तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये एक एक याचिका है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है।
एग्जैक्टली इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वाइल डोनेटिंग ब्लड किन बातों का खास ख्याल रखना है। लाइक आपने टैटू का भी जिक्र किया, तो क्या कोई टाइम लिमिट है, क्योंकि आजकल टैटू का ट्रेंड बहुत ज्यादा है और ज्यादातर लोग ये कराते भी हैं टैटू आर्ट को। अगर आप ऐसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना चाहें किन बातों का ख्याल रखना है।
देखिए, सबसे पहले तो आपका हीमोग्लोबिन जो है एक पर्टिकुलर रेंज में होना होता है। तो मान लीजिए आप एक मेल हैं तो आपका 15 से 18 के बीच में अगर हीमोग्लोबिन रहता है, 12-13 भी रहता है तो कई बार ले लिया जाता है, उससे कम में अगर रहता है तो वो ब्लड नहीं लेते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे भी एक भ्रांति मैं बस करना चाहूंगी कि एक प्रॉपर आता है, ऐसे नहीं कि आप जाइएगा और आपको पकड़ के वो ले लेंगे। तो आपका एच बी एक तो इस रेंज में आना चाहिए, तो एक तो ये क्राइटेरिया रहता है। दूसरा, जैसे मैंने टैटू की बात की, उसका भी कारण है, टैटू जब आपने खुद ब्लड नहीं लेते हैं आपसे, वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उसमें सुई का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि ट्रांसजेंडर्स के केस में अब हमें नहीं पता है हर एक की हिस्ट्री क्या है, तो अब हमें नहीं पता कि आपने कहाँ से टैटू खुदवाया है, वहां पे वो जो सुई का इस्तेमाल हुआ था वो बेसिकली ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं HIV, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी, इसको अवॉइड करने के लिए वो उसको बैन ही कर देते हैं कि अगर आपके शरीर पे टैटू है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। और कुछ चीजें हैं जैसे कि आपने 24 घंटे के अंदर अगर अल्कोहल पिया है तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। अगर आप एंटीबायोटिक्स पे हैं तो आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं, गाइडलाइंस हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि आप मेरी बात भी ना सुने, केवल आप चेक कर सकते हैं, आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं, और ऐसे नैको की NBTC की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो आपको बताएंगी कि कौन ब्लड दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। लेकिन ये 4-5 बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये तो ख्याल आप रख ही सकते हैं। ब्लड देना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस आपका मन हो कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे मैं रक्तदान करूं, तो आप मदिरा पान ना करें, आपके शरीर पे टैटू नहीं होना चाहिए, आपका HP नॉर्मल होना चाहिए, आप एंटीबायोटिक पे हैं तो आप ना जाएं, आपकी सर्जरी हुई हुई है तो आप ना जाएं, और बाकी अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप नैको और NBTC की वेबसाइट पे उनकी गाइडलाइन देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। जाते जाते आपसे यही कहूंगी, सबसे बड़ा महादान कीजिए, रक्तदान कीजिए। सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।
दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।